उपन्यास की शेष रिकॉर्डिंग इस तरह है। छायावादी कवियों ने अपनी अनुभूतियों के अनुरूप रूप विधि का निर्माण करते समय रूप की संगति और सार्थकता के साथ साथ उसके अतिरिक्त संकेत की भी ओर ध्यान रखा। इसलिए छायावाद की रूप योजना में एक ओर जहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों के व्यंजक चित्र मिलते हैं, वहाँ दूसरी ओर प्रतीक योजना भी काफ़ी मिलती है। जब हम कहते हैं कि छायावाद ने पुराने अलंकार विधान को छोड़ दिया तो इसका क्या मतलब होता है, इसे भी समझ लेने की जरूरत है। ऊपर से देखने पर तो छायावाद में भी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, स्मरण, रूपा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास आदि प्राचीन अलंकारों के उदाहरण मिलते हैं। इसी तरह अविधा, लक्षणा और व्यंजना के भी चमत्कार छायावाद में मिलते ही हैं। फिर छायावाद ने किस बात में पुराने अलंकार विधान का परित्याग किया? थोड़ी गहराई में जाने पर छायावाद की अपनी विशेषता स्पष्ट हो जाएगी। उदाहरण स्वरूप मध्ययुगीन और छायावादी कवि के बादल वर्णन को ले लें। बादल के वर्णन में दोनों ही कवि औपम्य विधान का सहारा लेते हैं। काले काले बादलों को देखकर मध्ययुग के सेनापति कहते हैं कि आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई कहे, और दूसरे कवि भी इसी तरह के उपमानों की सीमा में रहते हैं। परंतु पंत के बादल को देखें तो वह दर्जनों उपमानों का उपमेय दिखाई पड़ेगा। कभी वह जमुना जल में तैरते हुए विशाल जम्बाल जल की तरह मालूम होता है, तो कभी आकाश के मध्यगृह में लटके हुए स्वर्ण भृंगों की तरह, कभी वह अनिल स्रोत में तमाल के पात की तरह बहता है, तो कभी गगन की शाखाओं पर मकड़ी के जाल की तरह फैल जाता है। इतना ही नहीं, क्षितिज पर बादल की उठान संचय सी मालूम होती है, उसका शीघ्र फैल जाना अपयश सा प्रतीत होता है, नभ में उसका उमड़ना मोह की तरह ज्ञात होता है और उसका फैलाव लालसा सा दिखाई पड़ता है। इस तरह की अप्रस्तुत योजना छायावाद से पूर्ववर्ती संपूर्ण साहित्य में खोजे न मिलेगी। रूढ़ी भुक्त उपमानों की जगह छायावाद ने एकदम नए उपमान की योजना की, और इसी बात में उसकी नवीनता है, और यह नवीनता मामूली नहीं है। उपमाएं तो सभी कवियों ने दी, लेकिन उपमा कालिदास से ही कहा गया और कालिदास की यह क्षमता सामान्य नहीं है। उपमाओं की योजना से कवि की कल्पना शक्ति का पता चलता है। अनूठी और मार्मिक उपमाओं की खोज वही कवि कर सकता है जिसके पास अक्षय कल्पना शक्ति हो। छायावादियों के पास ऐसी ही कल्पना शक्ति थी। इस शक्ति के द्वारा छायावादियों ने कभी कभी रूढ़ उपमाओं के आधार पर भी नया चमत्कार पैदा कर दिया है। ग्रंथ के रूप वर्णन में पंत ने ऐसा बहुत किया है, जैसे आँखों के मीन, खंजन और भ्रमर आदि रूढ़ उपमाओं को लेकर इन पंक्तियों में नवीन वक्रता उत्पन्न की गई है। प्रथम भय से मीन के लघु बाल जो थे छिपे रहते गहन जल में, तरल उर्मियों के साथ क्रीड़ा की उन्हें लालसा अभय विकल्प करने लगी। उपमाओं के क्षेत्र में छायावाद की एक विशेषता और है कि जिसकी ओर आचार्य शुक्ल का ध्यान सबसे पहले गया, वह विशेषता यह है कि छायावाद ने अपना ध्यान प्रभाव साम्य पर विशेष रूप से केंद्रित किया, जबकि पुराने कवि आकार साम्य की ओर अधिक दौड़ते थे। जैसे रीतिवादी कवि बादल के लिए आकार साम्य पर हाथी की उपमा देते थे, लेकिन जब पंत ने उसे धीरे धीरे उठ संशय सा कहा तो उनका ध्यान बादल के धीरे धीरे उठने वाले धर्म की ओर गया। प्रेषी को चंद्रिका की झंकार, तारिकाओं की तान वगैरह कहना इसी प्रभाव साम्य का परिणाम है। रत्नावली दूर चले जाने पर निराला के तुलसीदास को और भी मधुर लगने लगी। इस पर निराला कहते हैं कि जिस तरह दूर की तान मीठी लगती है, उसी तरह प्रिया भी दूर जाकर मधुरतर प्रतीत होती है। वह आज हो गई दूर तान, इसलिए मधुर वह और गान। यहाँ उपमा की मार्मिकता इसी बात में है कि वह प्रभाव साम्य पर आधारित है। प्रभाव साम्य की विशेषता बतलाते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि सिद्ध कवियों की दृष्टि ऐसे ही अप्रस्तुत की ओर जाती है जो प्रस्तुत के समान ही सौंदर्य, दीप्ति, कांति, कोमलता, प्रचंडता, भीषणता, उग्रता, उदासी, अवसाद, खिन्नता इत्यादि की भावना जगाते हैं। प्रभाव साम्य ही आगे चलकर प्रतीक की योजना करता है। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। कहीं कहीं तो बाहरी सादृश्य या साधर्म्य अत्यंत अल्प या न रहने पर भी अभ्यंतर प्रभाव सामने लेकर ही अप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता है। ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप या प्रतीकवत होते हैं, जैसे सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यवन काल इत्यादि के स्थान पर उनके द्योतक उषा, प्रभात, मधुकाल, प्रिया के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधु, श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कुंद, रजत, माधुरी के स्थान पर मधु, दीप्तिमान या कांत के स्थान पर स्वर्ण, विषाद या अवसाद के स्थान पर अंधकार, अंधेरी रात या संध्या की छाया, पतझड़, मानसिक आकुलता या क्षोभ के स्थान पर झंझा, तूफान, भाव तरंग के लिए झंकार, भाव प्रवाह के लिए संगीत या मुरली के स्वर इत्यादि। इस तरह छायावाद ने औपम्य विधान की एक नई परिपाटी स्थापित कर दी। छायावाद ने जो अभ्यंतर प्रभाव साम्य पर जोर दिया, उसका कारण उसकी अंतर्दृष्टिदायिनी कल्पना शक्ति है। कल्पना जनित अंतर्दृष्टि के ही द्वारा छायावाद दो भिन्न प्रतीत होने वाली वस्तुओं में निहित अभ्यंतर साम्य का पता लगा लेता था। इस अंतर्दृष्टि के द्वारा छायावादी कवि चराचर के बीच स्थित सूक्ष्म संबंध सूत्रों के देखने में समर्थ था और अपनी विराट औपम्य योजना के द्वारा वह मनुष्य मनुष्य के बीच तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध स्थापित करने का महान कार्य करता था। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं, साम्य और आरोप भी निसंदेह एक बड़ा विशाल सिद्धांत लेकर काव्य में चला है। वह जगत के अनंत रूपों या व्यापारों के बीच फैले हुए उन मोटे महीन संबंध सूत्रों की झलक सी दिखाकर निरस्ता के शून्यपन का भाव दूर करता है। अखिल सत्ता के एकत्व की आनंदमयी भावना जगाकर हमारे हृदय का बंधन खोलता है। जब हम रमणी के मुख के साथ कमल स्मित के साथ अखिली कलिका सामने पाते हैं, तब हमें ऐसा अनुभव होता है कि एक ही सौंदर्य धारा से मनुष्य भी और पेड़ पौधे भी रूप रंग प्राप्त करते हैं। इससे जाहिर है कि साम्य का विधान जितने ही विराट आधार पर प्रतिष्ठित होगा, हृदय में भी उतनी ही विराट भावना का अभ्युदय होगा। यह कार्य समर्थ और विराट कल्पना वाले कवि ही कर सकते हैं। छायावादी कवियों ने यह कार्य अत्यंत सफलता के साथ किया, जबकि रीतिवादी कवि इसमें असमर्थ रहे। छायावादी कवि की उपमाओं ने धरती और आकाश को एक कर दिया। अमनी अंबर की रूपहली सीप में तरल मोती सा जलद जब कांपता, तैरते घन मृदुल हिम के पुंज से ज्योत्सना के रजत पारावार में। जहां महादेवी ने अमनी और अंबर को जो विशाल सीपी बना दिया और उसमें अपार जलद के तरल मोती की प्रतिष्ठा कर दी, वह छायावादी विराट कल्पना का प्रमाण है। महादेवी को यह रूपक इतना प्रिय है कि थोड़े से हेर फेर के साथ इसी को उन्होंने एक और गति में धुराया है। नीलम मरकत के संपुट दो जिनमें बनता जीवन मोती, नीलम आकाश और मरकत समुद्र, इन्हीं दोनों के बीच जीवन का मोती बनता है। यहाँ जीवन शब्द श्रेष्ठ है। समुद्र का जल ही बादल बनकर आकाश में उठता है और फिर वही समुद्र में बरसकर मोती की सृष्टि करता है। पंत ने जब विहंगम सा बैठा गिर पर सुहाता है विशाल अंबर कहकर अंबर के रूप में गिर पर बैठे हुए विशाल विहंगम को चित्र आँखों के सामने रख दिया, तो उसी विराट कल्पना का परिचय मिला। इसी तरह की आलोड़ित अम्बुदि फेनोन्नत कर सत सत फन मुग्ध भुजंगम सा इंगित पर करता नर्तन, दूसरी विराट उपमा है। अम्बुदि रूप में सैकड़ों फन उठाए हुए विशाल भुजंगम का चित्र और निराला तो अपने विराट चित्रों के लिए प्रसिद्ध ही है। यहाँ केवल एक चित्र देना पर्याप्त होगा। युद्ध के मैदान से राम लौट रहे हैं, उनकी जटा खुलकर बाहुओं, वक्ष और पीठ पर फैल गई और ज्योतिष के नेत्र चमक रहे हैं। निराला राम के इस विराट रूप की उपमा उस पहाड़ से देते हैं जिस पर रात का अंधकार उतर चला है और जिसके ऊपर दो दूर दो तारिकाएं चमक रही हों। दृढ़ जटा मुकुट हो, विपर्यस्त प्रतिलट से खुल फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर वक्ष पर विपुल उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर, नैषाधकार चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार। छायावादी अंतर्दृष्टि ने यदि एक ओर विराट उपमाओं की योजना की तो दूसरी ओर लघु अमूर्त उपमाओं का भी विधान किया। बात यह है कि छायावाद का दृष्टिकोण प्रधानतः भाववादी था, इसलिए छायावादी कवि प्रायः मूर्त वस्तुओं को भी अमूर्त से उपमित करते थे। मूर्त के लिए अमूर्त उपमाएं पहले के कवियों ने भी दी। स्वयं आदि कवि ने अशोक वन की सीता को एक पर एक कई अमूर्त उपमाओं से विभूषित किया है। हनुमान ने विरह विदुरा सीता को देखा तो ऐसा मालूम हुआ जैसे शोक के सागर में दुख की उर्मी उठ रही हो। सुविभक्तांगी क्षमा हो, भवभूति ने भी सीता की उपमा विरह व्यथा से दी है, परंतु प्राचीन कवियों में इस तरह की अमूर्त उपमाएं बहुत कम हैं। छायावादी कवियों की अपेक्षा प्राचीन कवियों की दृष्टि बहुत अधिक वस्तुवादी थी, इसलिए वे मूर्त की उपमा प्रायः मूर्त वस्तु से ही देते थे। इसके विपरीत अमूर्त उपमाएं देना छायावाद में साधारण बात हो गई थी। छाया तो यूं ही काफी सूक्ष्म वस्तु है, पर उसकी उपमा देते हुए पंत कहते हैं, गूढ़ कल्पना सी कवियों की, अज्ञाता के विस्मय सी, ऋषियों के गंभीर हृदय सी, बच्चों के तुतले भय सी। इस सूक्ष्मता और अमूर्तता के बावजूद छायावादी कविता ने चित्रात्मकता की रक्षा की अथवा चित्रात्मकता पर अधिक जोर दिया, यह कहना अधिक उचित होगा। छायावादी कविता की चित्रमयता के पीछे छायावाद की सामाजिक चेतना का सैद्धांतिक आधार है, और यह आधार है व्यक्तिकता का। चित्र विशेष का होता है, किसी एक का होता है, वह विशेष एक चाहे कोई वस्तु हो अथवा व्यक्ति, सामान्य का चित्र नहीं हो सकता। सामान्य सूक्ष्म चीज है, इसलिए वह चित्र रचना के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। चित्र का आधार तो विशेष होता है, परंतु उसका प्रभाव सामान्य होता है। चित्र विशेष के द्वारा सामान्य की अभिव्यक्ति करता है। छायावाद जड़ सामान्यता के विपरीत वैयक्तिक वैशिष्ट्य का प्रवक्ता था, व्यक्तिवाद उसका बीज मंत्र था, इसलिए वह सिद्धांततः चित्रमयता का पक्षपाती था। सामान्य की अपेक्षा विशेष के प्रति आग्रह अन्य साहित्यों के रोमांटिक कवियों में भी देखा जाता है। अंग्रेजी साहित्य का रोमांटिक कवि ब्लेक स्पष्ट शब्दों में कहता है कि सामान्यीकरण करना मूर्खता है, प्रतिभा की विशेषता केवल विशेषीकरण में ही है। सामान्य ज्ञान वह ज्ञान है जो मूर्खों के पास होता है। सामान्य प्रकृति क्या है? ठीक ठीक कहें तो सारा ज्ञान विशेष है। रोमांटिक कवियों का ऐसा कहना स्वाभाविक है, क्योंकि वे कल्पना में निवास करते हैं, और कल्पना जीवी के लिए यदि कोई वस्तु अपने विशेष रूप में नहीं आती तो उसके लिए उसकी कोई सार्थकता नहीं। समाज में जिसने व्यक्ति को महत्व दिया उसी ने कविता में विशेष क्षणों को महत्व दिया और प्रस्तुत योजना में विशेष चित्र को। जिस युग के कवियों में विशेष के प्रति ऐसा आग्रह न था उसमें चित्रमयता भी कम मिलेगी। द्विवेदी युग के कवि हर बात को सामान्य विचार के रूप में कहने में अभ्यस्त थे, जैसे आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे। ऐसी दशा में उनके लिए चित्र रचना का कार्य असंभव था। रीतिकाल के कवि भी प्राकृतिक वस्तुओं का नाम गिनाकर चल दिया करते थे, क्योंकि उनके युग की सामाजिक चेतना व्यक्ति को प्रधानता देने वाली न थी। उनके युग में विशेष दब गया था, सर्वत्र जड़ सामान्यता का ही राज्य था। विशेषता तो वहाँ होती है जहाँ मौलिकता होती है, और मौलिकता वहाँ आती है जहाँ व्यक्ति विशेष को साहस के साथ प्रयोग करने की छूट होती है। लेकिन रीतिकाल में तो मौलिकता की जगह रूढ़ी का राज्य था। साहसिक प्रयोग की जगह रूढ़ियों के निर्वाह को सुरक्षित समझा जाता था। इस तरह रूढ़ियों ने निर्विशेष सामान्यता की हिम शीतल चादर सब पर उड़ाकर छोड़ दिया। छायावादी कविता में चित्रात्मकता कितनी है यह स्वयं महादेवी ने अपने गीतों के समानांतर चित्र बनाकर प्रमाणित कर दिया। तरल मोती से नयन भरे कहते ही हमारे सामने आंसुओं से भरी हुई दो आंखें आ जाती हैं। इसी तरह यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली। प्रणत सिरों के अंकलिए चंदन की देहली, झरे सुमन बिखरे अक्षत शीत, पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया। पढ़ते ही मंदिर का सारा वातावरण आंखों के सामने साकार हो उठता है। यह चित्रमयता थोड़े बहुत अंतर के साथ सभी छायावादी कवियों में है। प्रकृति चित्रण में छायावादी कवियों ने बिंब ग्रहण कराने में विशेष सफलता प्राप्त की है, इसे आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया है। बात यह है कि किसी वस्तु का चित्र खड़ा करने के लिए उसके रूप और आसपास के वातावरण का ब्यौरा स्पष्ट रूप से देना पड़ता है और छायावादी कवियों ने यही किया। जैसे नौका विहार में पंत चांदनी चर्चित लहरों का चित्रण पूरे ब्यौरे के साथ इस तरह करते हैं। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, फैले फूले जल में फेनिल। दृश्य चित्रण में छायावाद ने प्रायः सभी इंद्रिय ग्राह्य विषयों के चित्र देने की चेष्टा की। अपनी कल्पना जनित संवेदना के सहारे उन्होंने वर्ण, गंध, ध्वनि आदि के बड़े सूक्ष्म चित्र उतारे। जैसे लहरों पर बूझती हुई सांझ की लाली का यह चित्र, लहरों पर स्वर्ण रेख सुंदर पड़ गई, नील जीव अधरों पर अरुणाई प्रखर शिशिर से डर, और पावस की रात में निर्झर बादल बूंदे तथा दादुर झिंगुर और पपियों के भिन्न भिन्न स्वरों की यह अनुकृति। पपियों की यह पीन पुकार, निर्झरों का भारी झरझर, झिंगुरों के झीनी झनकार, घनों की गुर गंभीर घर, बिंदियों की छंटी छनकर, दादरों के वे दुहरे स्वर। गंध का चित्रण बहुत ही कठिन है, फिर भी पंत ने एक जगह सरसों के फूलों की गंध के विषय में लिखा है, उड़ती भीनी भीनी तैलाक्त गंध। सफल चित्रों के अतिरिक्त छायावाद ने कुछ बड़े ही दुर्लभ चित्र भी दिए हैं, जैसे पहाड़ों में वर्षा की प्रतिध्वनि के लिए शैल पावस के प्रश्नोत्तर, अथवा शैल में जलद जलद में शैल, या उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। इस तरह के बहुत से दुर्लभ पहाड़ी चित्र पंत ने खींचे हैं और हिंदी कविता की चित्रशाला में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरह के भावाबेग और कल्पना चित्रों की लड़ी लगा देते हैं, उसी तरह वचन में विदग्धता लाते हैं। भावाबेग में वचन अपने आप बंकिम हो उठते हैं और विशेषण उलट पुलट जाते हैं। एक विशेषण जिस विशेषता के लिए ऋण है, उसका प्रयोग प्रायः किसी अन्य विशेषता के लिए हो जाता है। निसंदेह विशेषणों के इस विपर्य में भावाबेग के साथ ही कल्पना का बहुत अधिक हाथ रहता है। जमीन आसमान के कुलाबे मिलाना कल्पना का ही काम है। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा लेकर भानुमति कुनबा जोड़े या नहीं, लेकिन कल्पना अवश्य जुड़ती है। एक विशेषण को उठाकर दूसरी जगह रखाने का साहस कल्पना के ही बूते का है, इसलिए छायावाद में इस तरह के विशेषण विपर्य बहुत हुए। जिस तरह उषा की सखी चित्ररेखा ने सोते हुए अनिरुद्ध को उठाकर उषा के पास ला सुलाया, उसी तरह छायावाद की सहेली कल्पना ने भी दूर दूर पड़े हुए अनेक विशेषणों और विशेष्यों को लाकर एक जगह पर दिया। जैसे सुरीला विशेषण बांसुरी का, परंतु पंत ने उसका प्रयोग हाथ के लिए किया है। अब सुरीला हाथ कहकर कवि हाथ की किस विशेषता की ओर संकेत करना चाहता है, इसके लिए पाठक में भी यथोचित कल्पना की आवश्यकता है। इस तरह तुतला भय, तुतला उपक्रम, मूर्छित आतप, तुमुलतम, मादक कर, शीतल भ्रूपात, जीवित छाया, वृद्ध अनुभव, नील झंकार आदि प्रयोगों में विशेषण विपर्यय के कारण उत्पन्न सौंदर्य का दर्शन किया जा सकता है। व्यंजक विशेषणों के प्रयोग में पंत सभी छायावादी कवियों में अग्रणी हैं। छायावाद के बारे में आलोचकों का कहना है कि इस काव्य शैली पर प्रतीकवाद की भी छाप थी। इस कथन की सत्यता परखना आवश्यक है। हर युग की कविता में कुछ न कुछ उपमान रूढ़ होकर प्रतीक बन जाते हैं। जैसे मध्ययुग की कविता में खंजन अथवा मीन का नाम लेते ही आँख का बोध होने लगता है। उपमानों की इसी रूढ़ी के आधार पर कवियों ने रूपक अतिशयोक्ति का भवन खड़ा किया। जब तुलसीदास ने लिखा कि अरुण पराग जलज भरिनी के ससिही भूस अहि लोभ अमी के, तो बिना किसी उपमेय के ही कुछ तो प्रसंग से और कुछ इन रूढ़ उपमानों से सभी बातें अस्पष्ट हो जाती हैं। हम समझ लेते हैं कि अरुण पराग सिंदूर है, जलज गोरी हथेली है, अहि सांवली भुजा है, शशि मुख है और अमृत उस मुख का लावण्य है। इस तरह यहाँ सिंदूर दान की क्रिया की ओर संकेत किया गया है। जहाँ तक ऐसे प्रतीकों के प्रयोग का संबंध है, छायावाद ने भी कुछ नए उपमानों को प्रयोग की पुनरावृत्ति अथवा प्रसंगानुकूलता की सहायता से रूढ़ बनाने की चेष्टा की और इस तरह वे प्रतीक रूप में ग्राह्य होने लगे। जैसे उषा का था उर्मी आवास, मुकुल का मुख में मृदुल विकास, चांदनी का स्वभाव में भाष, विचारों में बच्चों के साथ। यहाँ उषा, मुकुल, चांदनी आदि उपमानों के संकेतात्मक प्रयोग से स्पष्ट है कि कवि इनका प्रयोग प्रतीक रूप में कर रहा है। ये अपने किसी गुण या धर्म विशेष की ओर लाक्षणिक संकेत कर रहे हैं। आरंभ में ऐसे प्रतीकों को समझने में कठिनाई हुई क्योंकि इनकी कोई परंपरा न थी। धीरे धीरे युग की सामान्य भावधारा तथा सामाजिक चेतना के द्वारा ऐसा वातावरण बन गया कि वे प्रतीक सामान्य लोगों के राग बोध के अंग बन गए। इस तरह छायावाद ने नए प्रतीकों की सृष्टि की, अर्थात पूर्व परिचित वस्तुओं में नवीन अर्थवत्ता भर दी। उन्हें पूर्व प्रचलित अर्थ में से विशेष अर्थ के लिए रूढ़ कर दिया। परंतु यह तो प्रतीकों का सामान्य प्रयोग हुआ, जहाँ तक प्रतीक लाक्षणिक ही हैं। इससे भी आगे बढ़कर छायावादी कवि ने कभी कभी व्यंजनागर्भी प्रतीकों का प्रयोग किया। ऐसा प्रायः वही हुआ जैसा किसी रहस्यात्मक सत्ता की ओर संकेत है, जहाँ कोई वस्तु अपने सामान्य उपलक्षण का तिरस्कार करके अथवा उससे आगे बढ़कर अपने से असंबद्ध प्रतीक होती हुई किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत करता है, वहाँ उसे व्यंजनागर्भी प्रतीक समझना चाहिए। ऐसी प्रतीक व्यंजना में छायावाद की रहस्य कल्पना का हाथ है। छायावादी कवियों के जिज्ञासु वृत्ति को प्रकृति में प्रायः किसी अन्य सत्ता का संकेत मिलता था। उस सत्ता को ठीक ठीक न देख पाने के कारण उसे वे रहस्य समझते थे। उनकी कल्पना शक्ति इतनी दूर तक तो जाती थी कि इन प्रस्तुत वस्तुओं से परे कोई और सत्ता है, परंतु वह सत्ता क्या है, इसका रूप निरूपण छायावादी कल्पना के बूते का न था। उसे रहस्यात्मक सत्ता के आकर्षण, चारुता और प्रियता से प्रभावित होकर मानव हृदयों ने उस पर मानवीय रूप का आरोप कर डाला। उसके प्रति कवि का आकर्षण इतना अधिक था और इस आकर्षण में उसे एक विशेष प्रकार के आभ्यंतर रागात्मक संबंध का अनुभव होता था कि उसे प्रियतम अथवा प्रिया का पद दे दिया। इस विराट कल्पना के कारण छायावादियों ने यह मान लिया कि संपूर्ण चर अचर प्रकृति अथवा दृश्य जगत एक प्रतीक है। यह अपनी अभिधा और लक्षणा से अधिक एक विशेष सत्ता की ओर संकेत करता है। दृश्य से परे यह अदृश्य की व्यंजना करता है, ज्ञात अज्ञात की सूचना देता है। जब यह चराचर ही एक प्रतीक है तो इसकी एक एक वस्तु के प्रतीक होने में क्या संदेह। कल्पना की इस स्थिति में प्रतीकवाद की प्रतिष्ठा होती है। इसलिए दार्शनिक दृष्टि से प्रतीकवाद और रहस्यवाद का अभिन्न संबंध है। छायावाद की रहस्य कल्पना ने उस प्रियतम के रूप और उससे अपने संबंधों की अभिव्यक्ति अनेक प्रचलित अप्रचलित प्रतीकों में की। जैसे उस अज्ञात प्रियतम की रहस्यात्मकता के लिए प्रायः आवरण वाले प्रतीकों का प्रयोग किया गया। महादेवी की दृष्टि में रजत रश्मियों की छाया में धूमिल घन सा वह आता और कभी कभी करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना। यही नहीं, वह छाया में आता है बल्कि स्वयं भी धूमिल घन सा है। प्रसाद का भी कहना है कि उनका प्रिय तो गोधूली के धुधलके में आता है और दूसरे मुख पर घूंघट डालकर, परंतु उन्हें संतोष है कि आंचल में दीप लिए आता है। इसलिए उस भीतरी प्रकाश में आवरण के बावजूद कुछ न कुछ मुख का आभास मिल ही जाता है। यह थोड़ा सा छिपना और थोड़ा सा दिखना महादेवी के ही प्रिय जैसा है। उनका भी धूमिल घन रश्मियों की छाया में आने के कारण कुछ न कुछ दिखा ही जाता है। प्रसाद कहते हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। जितना छिपकर वह आता है उतना ही छिपकर उसे मिलन भी होता है। इस प्रच्छन्न मिलन को छायावादी कवियों ने प्रायः स्वप्न मिलन के प्रतीक से दिखाया है। महादेवी के यहाँ वह सपना बन बन आता। प्रसाद ने इसके लिए सूफी कवियों के मत प्रतीक को अपनाया है। उनका प्रिय बेहोशी की दशा में आता है अथवा कभी कभी स्वयं ही नशा बनकर आता है। मादकता से आए तुम, ज्ञान के आलोक में यह रहस्य भावना विलीन हो जाती है। इस मन स्थिति को उन्होंने जागृति, होश अथवा चेतना के प्रतीकों द्वारा दिखाया है। जैसे महादेवी का प्रिय जागृति में जाता लौट, प्रसाद तो जिस तरह उसके आने पर नशे में रहते हैं उस तरह उसके जाने के बाद भी बेहोश रहते हैं। उनका प्रिय यदि मादकता की तरह आता है तो संज्ञा की तरह चल जाता है। कभी कभी यह नशा उतर भी जाता है, तब वे व्याकुल होकर विलखने लगते हैं। उन्हीं के शब्दों में, हम व्याकुल पड़े विलखते थे उतरे हुए नशे से, और फिर उस प्रिय की खोज में निकल पड़ते हैं। इस खोज की प्रवृत्ति को छायावादी कवियों ने कभी कस्तूरी मृग और प्रायः नदी के प्रतीक से व्यक्त किया है। नदी जिस तरह समुद्र की ओर से किसी आंतरिक आकर्षण का अनुभव करती है, हुई वेग से उसकी ओर दौड़ती चली जाती है, उसी तरह यह हृदय भी उसके आकर्षण में एक तरफ दौड़ता चल रहा है। प्रसाद की गंगा विश्राम मांगती अपना जिसका था देखा सपना, और पंत नदी के विषय में जिज्ञासा करते हैं कि माँ उसको किसने बतलाया उस अनंत का पथ अज्ञात। इस संपूर्ण रहस्यात्मक प्रतीक योजना का सामाजिक कारण है। उस समय समाज में जो नई व्यवस्था आ रही थी उसके विषय में कवियों का ज्ञान धुंधला था। जो कुछ नया आ रहा था उसे कुछ कुछ तो वे अनुभव करते थे, परंतु पूरा पूरा समझ न पाते। उनके लिए वह परिवर्तन अनुभव गम्य तो था परंतु बुद्धि गम्य न था, और सबसे बढ़कर तो यह कि उस परिवर्तन के मूल कारण का उन्हें ठीक ठीक ज्ञान था ही नहीं। इस परिवर्तन के पीछे कौन सी सामाजिक शक्ति काम कर रही है इसका विवेक उन्हें स्पष्ट रूप से न था। इसी को काव्यात्मक भाषा में उन्होंने यूँ कहा कि वह प्रियतम अज्ञात है, आवरण में आता है और सपने में मिलता है। परंतु ध्यान देने की बात है कि छायावाद में रहस्य प्रतीक बहुत थोड़े हैं। ऐसी प्रतीकवादी रचनाएं छायावाद में बहुत कम हुई हैं। जिन्होंने ऐसी रचनाएं की हैं उनमें प्रसाद के प्रतीक अन्य अप्रस्तुत विधानों की ही तरह प्रायः ऋण और शुक्ल जी के शब्दों में सांप्रदायिक हैं। अन्य कवियों ने प्रतीक भर्षक नए हैं। यहीं रूप विन्यास समाप्त होता है।